संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही, यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। और ये बात काल्पनिक नहीं है। स्वयं भगवान महावीर ने ये भगवान बनने का काम शेर की पर्याय में आरंभ किया था, और भगवान पारसनाथ ने ये भगवान बनने का महान कार्य हाथी की पर्याय में आरंभ किया था। शेर मांसाहारी जानवर है और हाथी शाकाहारी। इससे ये बात साबित होती है कि कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे वो शाकाहारी हो और चाहे वो मांसाहारी हो, अपने आत्मा को पहचान कर, अपने आत्मा को जान कर भगवान बन सकता है। ये बात जुदी है कि जब वो अपने भगवान आत्मा को जानेगा, पहचानेगा, तो फिर स्वयं शुद्ध सात्विक शाकाहारी हो जाएगा, उसके जीवन में मांसाहार नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि शाकाहारी या कोई विशिष्ट व्यक्ति ही भगवान बन सकता है और कोई दूसरा नहीं। इससे एक बात साबित होती है कि जैन दर्शन, भगवान महावीर का दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, अपितु पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। जब मैं ये बात कहता हूं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और वो पर्याय में भगवान बन भी सकता है, तो एक प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि यदि हम सब स्वयं भगवान हैं तो फिर बनने का क्या सवाल खड़ा होता है, और यदि हम भगवान बन सकते हैं, यह बात सत्य है, तो हम भगवान हैं, इस बात में क्या दम रह जाता है। ये दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं कि हम भगवान हैं भी और हम भगवान बन भी सकते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, और उसकी दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तत्व की गहराई में जाकर के ये बात समझने की कोशिश करते हैं, तो यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं। इसे अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक करोड़पति सेठ था और उसका एक इकलौता बेटा 5 बरस का। सेठ की तबीयत खराब रहने लगी तो वह डॉक्टरों के पास गया और जांच करने पर पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम साल 6 महीने के ही मेहमान हो, अब दवा का कोई काम नहीं है, अब तो दुआ से काम चलाओ। यह बात सुनकर सेठ बहुत चिंतित हुआ कि मेरी ये करोड़ों की संपत्ति और ये 5 बरस का ना समझ बालक कैसे संभालेगा, आखिर यूं ही बर्बाद हो जाएगी, यार दोस्त खा जाएंगे और जवानी में मेरा बेटा भिखारी बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने अपनी संपत्ति को बेचकर 1 करोड़ रुपया नगद जमा किया और किसी बैंक में अपने उस बेटे के नाम पर 20 वर्ष की फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करा दिया, और यह बात किसी को नहीं बताई। अपने एक दोस्त को छोड़कर और उससे भी ये कह दिया कि जब तक मेरा बेटा 25 वर्ष का ना हो जाए तब तक यह बात उसको न बताई जाए। और सेठ का स्वर्गवास हो गया। जो कुछ बचा था बेटे ने 2-5 साल खा पी कर खत्म कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो भीख मांगने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया। कहने लगे हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता है। इस तरह वो रिक्शा चलाने लगा और चौराहे पर खड़ा होकर आवाज लगाता कि रेलवे स्टेशन 5 रुपया, 5 रुपये में जिसको चलना हो रेलवे स्टेशन चले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो रिक्शे वाला बालक करोड़पति है या नहीं। यदि आप कहें कि वो करोड़पति है तो मैं कहूंगा कि करोड़पति तो लोग रिक्शा नहीं चलाया करते हैं, वो रिक्शा क्यों चलाता है। यदि आप कहें कि वो करोड़पति नहीं है तो मैं कहूंगा कि जिसके करोड़ों रुपया बैंक में जमा हैं, यदि वह भी करोड़पति नहीं है तो फिर आखिर कौन करोड़पति है। आखिर करोड़पति कहते किसे हैं? उसे ही ना कि जिसके पास करोड़ रुपया हो। उसके पास करोड़ रुपया हैं फिर वो करोड़पति क्यों नहीं। तो वही प्रश्न फिर मुझे भाई खड़ा है कि यदि करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता। अरे भाई, किसकी तिजोरी में करोड़ रुपए हैं और किसकी तिजोरी में करोड़ रुपए नहीं हैं, ये आज तक किसने देखे, किसने गिने? कोई अपने तिजोरी के नोट दूसरों को दिखाता है? दूसरों को गिनने की इजाजत देता है? क्योंकि हमारी तो पुरानी आदत है कि जब घर का मेन गेट बंद कर देंगे तब तिजोरी का गेट खोलेंगे, और जब तिजोरी का गेट बंद करके चाबी गायब कर देंगे तब मेन गेट खोलेंगे। तो दूसरे की तिजोरी के नोट देखने और गिनने का सवाल कहाँ खड़ा होता है। तो फिर कैसे पता चले कि कौन करोड़पति है और कौन करोड़पति नहीं है? तो लोग कहते हैं इसमें क्या है। अरे बाहर मोटर गाड़ियां दौड़ती हों, कल कारखाने चलते हों, मुनीम गुमास्ते बैठते हों तो समझ लेना करोड़पति है। किसी की तिजोरी के नोट गिनने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसे आप करोड़पति समझ रहे हों वो करोड़ों का कर्जदार हो। बैंक से करोड़ों रुपया कर्ज में मिल जाते हैं, कल कारखाने खुल जाते हैं, मोटर गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, मुनीम गुमास्ते बैठ जाते हैं और चलती का नाम गाड़ी, उनका ठाट बाट देखकर अड़ोसी पड़ोसी विधवाएं विद्वान ब्रह्मचारी लोग संस्थाएं उनके पास अपने पैसा आकर जमा कराने लगती हैं। इस तरह वे दूसरों के पैसों से करोड़पति बन जाते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वे करोड़ों के कर्जदार हैं। और हो सकता है दिवाला निकालने की सोच रहे हों। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास ये जानने का साधन क्या है कि ये करोड़पति है या नहीं। इसलिए हम बहर दृष्टि से बाहर के ठाट बाट देख करके ही निर्णय कर लेते हैं कि ये करोड़पति है या नहीं। लेकिन बाहर की दृष्टि से किया गया निर्णय, बाहर के ठाट बाट के आधार पर किया गया निर्णय सच्चा नहीं होता। इसके आधार पर तो हम उस रिक्शे वाले को जिसके करोड़ों रुपया बैंक में जमा है उसे हम कंगाल समझते हैं, करोड़पति नहीं समझते हैं, और जो करोड़ों के कर्जदार हैं उनको हम करोड़पति समझ लेते हैं। क्या ये कसौटी सही है? ऐसे ही हम बाहर के ठाठ बाट देख करके ही किसी को महान मानते हैं, भगवान मानते हैं। 1,000-2,000 भगत हुए, चारों तरफ जय के नारे लगाने वाले मिल जाएं, दो पांच करोड़पति मिल जाएं करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए, अखबारों में हमारे फोटो छपने लग जाएं, तो कोई भी आदमी हमें भगवान मानने को तैयार हो जाता है। समोषण की विभूति देखकर भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। सौ इंद्र चरणों में आगे नमस्कार कर रहे हैं तो हम भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, तो हमारे चित्त को ये बात स्वीकृत नहीं होती है कि ये रिक्शे वाले, ये पान वाले, ये चाय बेचने वाले, ये साधारण लोग भी भगवान हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आदत भी बाहर से देखने की हो गई है। हम बाहर के ठाट बाट देख करके ही किसी को भगवान भी मान सकते हैं, लेकिन अंदर की जो विभूति है वो हमारे देखने में नहीं आती। इसलिए जिस प्रकार वो रिक्शे वाला करोड़पति है और सारी दुनिया उसे न माने, और वो करोड़पति सेट करोड़पति नहीं है और दुनिया माने, दुनिया तो ऐसा ही है। लेकिन दुनिया के मानने और नहीं मानने से क्या होता है? यदि उस रिक्शे वाले के करोड़ रुपया बैंक में जमा है तो वो करोड़पति है और है, कोई माने और चाहे ना माने। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा यदि स्वभाव से भगवान है तो है और है, ये जगत माने तो है और नहीं माने तो है। अब रही बात ये कि यदि वो भगवान है तो भोगों का भिखारी क्यों बना है, ये दुखी क्यों है, ये चार गति और 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहा है, इस सुख की खोज में 7 समुद्र पार क्यों भागता है? ये जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे हृदय को मतते हैं, इनका भी हमें जवाब चाहिए। और ये प्रश्न वैसे ही हैं कि यदि वो रिक्शा वाला करोड़पति है तो वो रिक्शा क्यों चलाता है, क्योंकि रिक्शा वाले करोड़पति नहीं चलाया करते हैं। एक बात और भी हो गई है, हमारा कुछ मन ही ऐसा हो गया है कि हम किसी रिक्शे वाले को, पान वाले को, सड़क पर पैदल नंगे पैर चलने वाले को करोड़पति मान ही नहीं सकते। कोई कितना ही समझाए, प्रमाण दे, लेकिन हमारा दिल उन्हें करोड़पति मानने को तैयार नहीं है। और उससे भी गजब बात तो ये है कि कोई करोड़पति रिक्शा चलाए, ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है। देखो कैसी विचित्र बात है, कोई पुराना सेठ हो, अब गरीब हो गया हो, पहले गाड़ियों में जाकर दौड़ दौड़ के स्टेशन जाया करता था, अब हाथ रिक्शा में बैठ के जा रहा हो, तो हमें कितनी दया आती है कि देखो बेचारे कभी गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखते थे और आज रिक्शे में स्टेशन जा रहे हैं, उन पर दया आती है, जबकि हम स्वयं पैदल जा रहे हैं, स्वयं नंगे पैर जा रहे हैं, अपने पर दया नहीं आती है, उन पर दया बेचारे लगते हैं। क्यों? कि हमारा ऐसा मन बन गया है कि कोई कार में चलने वाला रिक्शे में ना बैठे, हमारी जो दशा हो सो हो। ऐसे ही हमारा कुछ ऐसा मन बन गया है कि कोई साधारण आदमी को भगवान कहें तो हमारा मन उसे भगवान मानने को तैयार ही नहीं है। और भगवान रिक्शा चलाएं क्यों, भगवान भोगों के भिखारी बने फिरे, ये तो बर्दाश्त के बाहर बात है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि चलते फिरते आदमी सभी जो आपको दुखी दिखाई दे रहे हैं वे स्वभाव से स्वयं भगवान हैं, तो किसी के चित्त को ये बात स्वीकार नहीं होती। हम चाहे इतने दुख भोगें, लेकिन भगवान की ये दुर्दशा हो, ये हमें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। लेकिन हमारे स्वीकार करने से और स्वीकार नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? यदि वो रिक्शे वाले के करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, तो वो करोड़पति है और है, हम माने चाहे ना माने। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है तो है, हम माने और ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी मैंने कहा ना कि एक प्रश्न तो खड़ा ही है कि आखिर करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है? ये भगवान आत्मा है तो भोगों का भिखारी क्यों बना है? तो उसका एक कारण है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं। उस रिक्शे वाले को ये पता नहीं है कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, इसलिए वो रिक्शा चलाता है। क्योंकि होने से क्या होता है, जब तक पता नहीं हो, होने का लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता नहीं है। दर्जी को हीरा मिलो सुई पौना नाम। एक दर्जी रास्ते में जा रहा था, उसे कोहिनूर हीरा पड़ा मिल गया। वो पहचानता तो था नहीं कि बहुत अच्छा चमकदार पत्थर है, ऐसा समझ के वो उठा लिया और सोचने लगा कि इसमें तो उजेला भी निकलता है, मुझे रोजाना सुई में डोरा डालने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ती है, अब आज से वो नहीं जलानी पड़ेगी और इस चमकदार पत्थर की उजाले में मैं अपनी सुई में डोरा डाल लिया करूंगा। और इस तरह वो उसे अपने घर ले आया। जब जरूरत पड़ती सुई में डोरा डालता और नीचे फेंक देता, जूतों में पड़ा रहता, द्वारा जरूरत पड़ती तो पत्नी को आवाज लगाता कि वो सुई पौना पत्थर लाना, और वो देती, सुई में डोरा डालता और फेंक देता। क्यों मैं आपसे पूछता हूं कि जिसके घर में कोहिनूर हीरा हो, उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी के पेटीकोट ब्लाउज सीने की जरूरत है? लेकिन सी रहा है, उसके घर में कोहिनूर हीरा है और वो ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये क्या चीज है। ऐसे इस आत्मा को पता नहीं है कि आखिर मैं क्या चीज हूं, इसलिए ये भोगों का भिखारी बना है। उस रिक्शे वाले को ये पता नहीं है कि आखिर मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, इसलिए वो रिक्शा चला रहा है। होने से क्या होता है, जब तक पता नहीं हो तो होने का लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता नहीं है। क्यों जी? उस दर्जी को ये मालूम पड़ जाए कि कोहिनूर हीरा है, ये बहुत कीमती है, तो फिर वो आजीविका चलाने के लिए, दो रोटियों के लिए दूसरों के कपड़े सिएगा? नहीं सिएगा। तो क्या करेगा? उसे जाएगा और बाजार में बेच के बढ़िया माल मसाला आटा दाल ले आएगा। क्यों भाई साहब, ठीक है? तो फिर कुछ नहीं समझे आप यदि ठीक है तो। क्यों? क्या आटा दाल लाने के लिए कोहिनूर हीरा बीच में बेचना पड़ेगा? आप जानते हैं, लंदन के म्यूजियम में हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा आज भी रखा है और हजारों टूरिस्ट प्रतिवर्ष उसे देखने के लिए जाते हैं। दो दो घंटे लाइन में, लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, हजार हजार रुपए का टिकट लेते हैं, तब उसे दो सेकंड देखने को मिलता है। एक बार उन लोगों की लाइन में हम भी खड़े थे। दो घंटे के इंतजार के बाद जब हमारा नंबर आया, हमने देख भी नहीं पाया कि पुलिस वाला बोला आगे बढ़ो। हमने कहा भाई साहब, हजार रुपया खर्च किया है, दो मिनट शांति से देखने तो दे। तो बोला क्या बात करते हो, आपने दो सेकंड एक आदमी देखता है तब तो आपका दो घंटे में नंबर आया, यदि हर आदमी दो मिनट देखेगा तो आपका नंबर दो दिन तक नहीं आएगा। चलो चुपचाप। इस तरह उस कोहिनूर हीरे के दिखाने मात्र के रोजाना लाखों रुपया ब्रिटिश सरकार को आज भी मिलते हैं, वो कमाती है। कितने पैसे कमा लिए उसने हमारे कोहिनूर से, तुम्हें कल्पना नहीं है। जिसके दर्शन मात्र से लाखों रुपए की इनकम होती हो, उसे बेचना पड़ेगा रोटियों के लिए? तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, ये इतना बेशकीमती है कि इसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, इसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और इसके ध्यान करने का नाम सम्यक चरित्र है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र साक्षात भगवान बनने के उपाय हैं। तेरा भगवान आत्मा कोहिनूर हीरा है भाई, तूने पहचाना नहीं, इसलिए तू भोगों का भिखारी बना पड़ा है। और आज हमने इस भगवान आत्मा की कैसी हालत कर दी है, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं, पानी बिना चले नहीं, 3 कप चाय ना पिए, 10 सिगरेट ना फूंके तब तक लेटरिन ही साफ नहीं होती है। मैं रेल के डब्बे में जाकर देखता हूं, बाथरूम में जाए तो सैकड़ों सिगरेट के ढूंढ वहां पड़े रहते हैं, बीड़ी सिगरेट के। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये क्या, ये कहां ऐसे आए हैं? बोले आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, कि लोग यहां आकर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये खाने पीने की जगह है, क्या करें, उसके बिना पेट ही साफ नहीं होता। ऐसे 3 लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा की कर दी है, क्योंकि हमने उसको जाना नहीं, हमने उसको पहचाना नहीं। एक बार हम उसे जान लें, वो दर्जी को ये पता लग जाए कि कोहिनूर हीरा क्या चीज है, इसकी प्रदर्शनी लगाकर करोड़पति बना जा सकता है, तो फिर वो दूसरों के कपड़े सिएगा। रिक्शे वाले को पता चल जाए कि मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, तो क्या फिर वो रिक्शा चलाएगा? ऐसे ही इस भगवान आत्मा को ये पता चल जाए कि मैं स्वयं भगवान हूं, आनंद का रस कंद हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं, गुणों का गोडाउन हूं, तो इस भगवान आत्मा से भी फिर कभी कोई नीच काम नहीं होंगे, खोटे काम नहीं होंगे। इसलिए असली बात यह है कि इसने अपने आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए ये अनंत दुखी है। क्यों जी? यदि वो अपने को जान ले, वो जान ले, उस बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो फिर तो काम हो जाएगा ना। महावीर प्रसाद जी, महावीर कहते हैं, सोचते हैं 20 बरस पूरे हो गए और कोई व्यक्ति बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा, तो बैंक वालों ने अखबार में समाचार निकलवाया कि सुरेश बल्द रमेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, जो आज ब्याज सहित 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, वो आकर के 7 दिन के भीतर ले जाए, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। और ये बात अखबारों में विज्ञापन के रूप में आ गई। रिक्शे पर बैठे बैठे उस बच्चे ने भी वो अखबार पढ़ा और पढ़कर सारे रिक्शे वालों को इकट्ठा किया कि देखो देखो इसमें क्या लिखा है, मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, आज से तो मुझे करोड़ रिक्शे वाला मत कहना, करोड़पति समझना। इस तरह अपना मनोरंजन भी किया और दूसरों का भी मनोरंजन किया, पर विश्वास नहीं हुआ तो पैसा लेने बैंक नहीं पहुंचा, तो रिक्शा चलाना नहीं छूटा। अकेले जानने से क्या होता है, जब तक विश्वास नहीं हो तो जानने से भी काम होता नहीं है। जब उसने पहले ही दफे अखबार में पढ़ी थी वो बात, तो उसकी बाँछें खिल गई थी, क्या मैं करोड़पति हूं, 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा है। लेकिन अगले ही क्षण संशय के सांप ने डस लिया कि मैंने तो कभी बैंक में खाता ही नहीं खोला, 1 करोड़ रुपया मेरे कैसे हो सकते हैं, ये तो किसी दूसरे सुरेश के होंगे। ध्यान से देखा तो बाप का नाम भी वही था जो उसके बाप का नाम था। थोड़ी आशा बनी और फिर संशय हो गया कि ये ऐसा नाम उसके बाप का भी तो हो सकता है, और संशय पैदा होते ही बात वहीं की वहीं रही और बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा तो वो करोड़पति नहीं बन पाया, भिखारी का भिखारी रह गया। ऐसे ही हमने अपने भगवान आत्मा को शास्त्रों में पढ़ के जाना, लेकिन जानकर विश्वास नहीं किया। पहले तो हम खुश हो गए कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं, और अगले ही क्षण संशय के सांप ने डस लिया कि इसमें तो ये लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा हूं, लेकिन मैं तो पंडित हुकुमचंद हूं, मैं थोड़ी परमात्मा हूं। और बात वहीं की वहीं रही और हम
भगवान ना बन सके। अब भगवान कैसे बनते हैं इसकी चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।